नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात करेंगे
जी।
इसका शीर्षक है आत्मावलोकन का सरल उपाय। तो कोशिश करेंगे इसके जो गहरे विचार हैं उन्हें समझने की।
हाँ, और जो हमारे पास स्रोत है वो ये दिखाते हैं कि कैसे आचार्य जी ने जो बिखरा हुआ जीवन होता है ना, थोड़ा लक्ष्यहीन सा,
हाँ बिल्कुल,
उसको समेट कर एक सही दिशा, एक राह कैसे दी जाए, इसका उपाय बताया है।
और वो जीवन की इस अस्त व्यस्तता को क्या कहते हैं, वो बंदरों की तरह उचक मचक।
हाँ बिल्कुल, यही शब्द इस्तेमाल करते हैं वो। और दिलचस्प बात ये है कि इसका कारण वो किसी साधन या मौके की कमी को नहीं मानते।
अच्छा, तो फिर
उनके हिसाब से असली जड़ तो हमारी सोच है, हमारी मानसिकता, जिसे वो कहते हैं मनः संस्थान। मतलब हमारा सोचने समझने का जो पूरा ढांचा है वही शायद इतना गया बीता है कि हम बड़े लक्ष्यों के बारे में सोच ही नहीं पाते।
मतलब ईश्वर ने जो क्षमताएं दी हैं उनका विकास ही नहीं हो पाता।
बिल्कुल, हम उस स्तर पर सोच ही नहीं पाते।
हाँ, तो अगर समस्या सोच की है, मानसिकता की है, तो फिर सवाल ये है कि भाई शुरुआत कहाँ से करें? इतना बड़ा बदलाव लाना है तो पहला कदम क्या हो?
देखिए आचार्य जी, यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल और शायद कुछ लोगों को लगे कि ये कैसा सुझाव है, पर वो कहते हैं शुरुआत करो अपनी जीभ पर नियंत्रण से।
जीभ पर मतलब स्वाद पर?
हाँ, स्वाद पर, अस्वाद व्रत। वो गांधी जी का भी जिक्र करते हैं। आपको पता होगा गांधी जी भी यही मानते थे कि जीभ पर काबू पा लिया तो समझो इंद्रियों और मन पर काबू पाने की पहली सीढ़ी चढ़ ली।
हाँ हाँ, सुना है मैंने।
तो ये सिर्फ सेहत या हाजमे की बात नहीं है, ये एक बुनियादी अनुशासन है। ये ब्रह्मचर्य पालन के लिए भी जरूरी है और जीवन के हर पहलू में एक संयम लाने की ये नींव डालता है।
अच्छा, यानी स्वाद पर संयम ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और चारित्रिक अनुशासन का भी आधार बन गया। ये तो बड़ी गहरी बात है
जी।
लेकिन क्या सिर्फ जीभ पर कंट्रोल करने से आत्मविश्लेषण हो जाएगा?
इसके आगे क्या रास्ता है?
नहीं नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है, नींव है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, आत्मचिंतन के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए आचार्य जी एक और जरूरी कदम बताते हैं, वो है एकांत।
एकांत?
हाँ, वो इसे गुफा प्रवेश का नाम देते हैं। इसका मतलब है कि जानबूझकर थोड़े समय के लिए ही सही खुद को बाहरी दुनिया के शोर शराबे से, रोजमर्रा की भाग दौड़ से अलग करना,
अकेला महसूस करना,
जैसे पुराने जमाने में संत महात्मा गुफाओं में चले जाते थे।
हाँ, कुछ वैसा ही। देखिए आज के जमाने में ये थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, हम हमेशा लोगों से, कामों से, फोन से घिरे रहते हैं ना।
हाँ बिल्कुल, फुर्सती कहाँ मिलती है?
और आचार्य जी कहते हैं यही तो दिक्कत है, हमारा मन 24 घंटे बाहर की चीजों में लगा रहता है, घर, परिवार, बच्चे, दुकान, नौकरी, पैसा, हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं।
अपनी चिंता कम, दूसरों की ज्यादा।
हाँ।
खुद अपने बारे में सोचने का, अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को बिना किसी पक्षपात के देखने का टाइम ही नहीं निकालते। तो एकांत क्या करता है?
वो हमें इस बाहरी दबाव से, इस मोह माया के जाल से थोड़ी देर के लिए निकाल कर अपने अंदर देखने का मौका देता है।
अच्छा, तो ये एक जरूरी माहौल बनाता है आत्मनिरीक्षण के लिए।
बिल्कुल अनिवार्य माहौल।
तो ठीक है, पहले अनुशासन आया, फिर एकांत में आत्मचिंतन, इसका नतीजा क्या होता है? आचार्य जी इसके परिणाम को कैसे समझाते हैं?
इसका परिणाम होता है नया जन्म।
नया जन्म?
हाँ, स्रोत में इसकी तुलना माँ के पेट में पल रहे बच्चे से की है, या फिर जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन को अवे में, मतलब भट्टी में पकाता है ना।
हाँ हाँ, पकाता है,
उससे की है। इसका मतलब गहरा है, जैसे कच्चा बर्तन आग में तपकर पक्का, मजबूत, काम का बनता है, वैसे ही इंसान एकांत और अनुशासन की इस भट्टी में तपकर अपने पुराने कमजोर रूप को छोड़ देता है।
तो मतलब पिछली गलतियां, फालतू की बातें, मोह माया, इन सब से मुक्त होकर एक नई शुरुआत।
एकदम सही, एक परिपक्व, एक नई शुरुआत,
नया जन्म।
ये सुनने में तो बहुत बड़ा बदलाव लगता है, क्या इसका मतलब है कि अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना?
नहीं नहीं, बिल्कुल उल्टा, इसका मतलब है जिम्मेदारियों को और बड़े और ऊंचे स्तर पर समझना। नया जन्म का मतलब है अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से ऊपर उठना।
अच्छा, जिन्हें आचार्य जी हविष कहते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ।
हाँ बिल्कुल, वो व्यक्तिगत स्वार्थ और कामनाएं, उनसे ऊपर उठकर अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ अपने घर परिवार तक ही नहीं बल्कि समाज के लिए, देश के लिए, ऊंचे आदर्शों के लिए महसूस करना।
और इसमें वो नारी के प्रति दृष्टिकोण बदलने की बात भी करते हैं शायद।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वो कहते हैं कि वासना या उपभोग की दृष्टि छोड़कर नारी को माँ, बहन, बेटी या एक सम्मानित सहकर्मी के रूप में देखना। असल में लक्ष्य है अपने पूरे व्यक्तित्व की गरिमा को, उसकी ऊंचाई को बढ़ाना। ये तो ही सोच और विचार के स्तर पर बदलाव की बात। क्या आचार्य जी इसे असल जिंदगी में उतारने के लिए कुछ ठोस व्यावहारिक कदम भी बताते हैं रोजमर्रा के लिए?
हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बदलाव सिर्फ सोचने से तो आएगा नहीं ना, इसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में संयम लाना पड़ेगा। जैसे पैसे का संयम,
फिजूल खर्ची से बचना।
हाँ, और पैसे का सही इस्तेमाल करना, अच्छे कामों में लगाना। फिर समय का संयम, टाइम की कीमत पहचानना, उसे बेकार नहीं करना, पाबंद होना। जैसे शिविर में घंटी बजी तो फौरन पहुंच गए।
हाँ, ये उदाहरण दिया है उन्होंने।
इसी तरह विचारों और व्यवहार में भी संयम, मतलब सोच समझ कर बोलना, सबसे अच्छा व्यवहार करना।
और ये सारी बातें, ये संयम, ये सिर्फ किसी खास कैंप या थोड़े समय के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी भर के लिए हुआ फिर?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आचार्य जी साफ कहते हैं कि ये सिद्धांत जीवन भर अपनाने वाले हैं। पैसा, समय, विचार, व्यवहार, इन सब में लाया गया संयम ही उस नए जन्म को पक्का करता है,
व्यक्तित्व को निखारता है,
बेहतर जीवन जीने का तरीका है, एक जीवन शैली है।
तो अगर हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के इस उद्बोधन आत्मावलोकन का सरल उपाय का सार निकालें, तो निचोड़ ये है कि अपने बिखरे हुए जीवन को समेटने और उसे बेहतर बनाने के लिए दो मुख्य चीजें हैं।
जी।
पहला अनुशासन, जिसकी शुरुआत बहुत ही बुनियादी चीज से, जैसे जीभ पर नियंत्रण, उससे होती है। और दूसरा एकांत का अभ्यास, जो हमें बाहर के शोर से हटाकर अपने अंदर झांकने का मौका देता है।
बिल्कुल, और जब ये दोनों मिलते हैं, अनुशासन और एकांत, तो वो प्रक्रिया शुरू होती है जिसे आचार्य जी नया जन्म कहते हैं। हम अपनी कमियों को पहचानते हैं, उनसे ऊपर उठते हैं।
हाँ।
और अपने जीवन को स्वार्थ से परमार्थ की तरफ ले जाते हैं, एक ज्यादा उद्देश्यपूर्ण, ज्यादा गरिमामयी दिशा में। सच में ये खुद को बदलने का एक सरल पर बहुत गहरा रास्ता है।
और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में जीवन का वो कौन सा पहलू है जहां बाहरी दुनिया की राय या लोगों की अपेक्षाओं या समाज के दबावों से ज्यादा खुद अपनी आत्मा की, अपने विवेक की आवाज सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। सोचिएगा, कहां पर अपने नजरिए में एक छोटा सा बदलाव जीवन में सबसे बड़ा और अच्छा परिवर्तन ला सकता है।